कुंज विहारी जय नमाधव कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहारी जय माधव कुंज विहार जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जन वल्लभ गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय माधव कुंज जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी जय मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर श्री हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की सामवेद भक्तवृंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद पांचवा अध्याय उन्नीसवा जम्बू द्वीप का वर्णन श्लोक पच्चीसवा मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। प्राप्ता नृजातिं त्विहये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृतां नवयते रन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम् प्राप्तान जातिम तिवहे च जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृताम न वैयते रन्न पुनर्भवायते भूयो वनौकायिव यान्ति बन्धनम् प्राप्ता नृजातिं त्विव ए च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृताम् न वैयते रन्न पुनर्भवायते भूयो वनौकायिव यान्ति बन्धनम् प्राप्तान् जातिं त्विहये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृताम् न वैयते रन्न पुनर्भवायते भूयो वनौकायिव यान्ति बन्धनम् प्राप्तान् जातिं त्विहये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कला संभृताम् न वैयते रन्न पुनर्भवायते भूयो वनौकायिव यान्ति बन्धनम् प्राप्तान् जातिं त्विहये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृताम् न वैयते रन्न पुनर्भवायते भूयो वनौकायिव यान्ति बन्धनम् जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की। माता जी प्राप्तान् जातिं त्विहये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृताम् न वैयते रन्न पुनर्भवायते भूयो वनौकायिव यान्ति बन्धनम् प्राप्तान् जातिं त्विहये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृताम् न वैयते रन्न पुनर्भवायते भूयो वनौकायिव यान्ति बन्धनम् प्राप्तान् जातिं त्विहये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृताम् न वैयते रन्न पुनर्भवायते भूयो वनौकाइव यान्ति बन्धनम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ, प्राप्ता, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, नृजातिम, मानव समाज में जन्म, तू निश्चय ही, यह इस भारत देश में, ए वे जो, च भी जंतवहा, जीव, ज्ञान, ज्ञान से, क्रिया, कर्म से, द्रव्य, पदार्थों के, कलाप, समूह से, संभृताम, पूर्ण, न, नहीं, वै, निश्चित रूप से, यतरेण, प्रयत्न, अपुनः भवाय, अमर पद के लिए, ते, ऐसे व्यक्ति, भूयः, पुनः, वनौकाः, पक्षियों, इव, जैसा, यान्ति, जाते हैं, बंधनम, बंधन को। अर्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। भक्तिमय सेवा संपन्न करने के लिए भारतवर्ष में उपयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थितियां उपलब्ध है। भक्ति से मनुष्य ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हो सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह प्राप्त करता है, जिसके साथ संकीर्तन यज्ञ संपन्न करने के लिए उपयुक्त शुद्ध इंद्रिया भी प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी यदि वह भक्ति नहीं अपनाता तो वह उन जंगली पशुओं तथा पक्षियों के भांति है जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। तात्पर्य, भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें मनुष्य सरलता से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाले संकीर्तन यज्ञ को अथवा स्मरणम अर्चनम दास्यम साख्यम तथा आत्मनिवेदनम जैसी अन्य भक्ति विधियों को सरलता पूर्वक संपन्न कर सकता है। भारतवर्ष में ही मनुष्य को अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है, जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान नवद्वीप तथा श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान वृंदावन मुख्य है, जहां अनेक शुद्ध भक्त होते हैं और उनकी एकमात्र अभिलाषा होती है भक्तिमय सेवा संपन्न करना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधि अनावृतम। इस प्रकार से मनुष्य भौतिक बंधनों से छूट जाता है। अन्य मार्ग यथा ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग उनके लाभप्रद नहीं है। पुण्य कार्यों से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और ज्ञान मीमांसा से जीव ब्रह्म में विलीन हो सकता है, किंतु यह वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि मनुष्य को ब्रह्म में विलीन हो जाने की मुक्त अवस्था से भी पुनः पतित होकर नीचे आना पड़ता है और स्वर्गलोक से तो निश्चित रूप से पतन होता ही है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के धाम वापस पहुंचने के लिए प्रयास करे, यान्ति मद्या जिनोपि माम, अन्यथा मनुष्य जीवन तथा जंगली पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। पशु तथा पक्षी भी स्वतंत्र होते हैं, किंतु निम्न योनि में जन्मने के कारण वे स्वतंत्रता का उपयोग कर नहीं पाते। अतः भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को जो भी सुविधाएं प्राप्त है, उन सभी का उपयोग करते हुए उसे प्रबुद्ध भक्त बनना चाहिए और श्री भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही विषय है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी देशों के निवासियों को भौतिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त है, किंतु उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की वैसी सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जिस किसी का भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अंश मानना चाहिए और कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लेने के पश्चात समग्र विश्व में इस ज्ञान का वितरण करना चाहिए। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी का आज के इस रविवारीय भागवतम क्लास में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद के 19वें अध्याय से वर्णन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन, और उसमें ये 19वां श्लोक है। अर्थ एक बार वापस से पढ़ेंगे। भक्तिमय सेवा संपन्न करने के लिए भारतवर्ष में उपयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थितियां उपलब्ध है। भक्ति से मनुष्य ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हो सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह प्राप्त करता है जिसके साथ संकीर्तन यज्ञ संपन्न करने के लिए उपयुक्त शुद्ध इंद्रिया भी प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी यदि वह भक्ति नहीं अपनाता तो वह उन जंगली पशुओं की तथा पक्षियों की भांति है जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही जम्बूद्वीप का वर्णन है। भारत देश को ही जम्बूद्वीप कहा जाता है, और आज के क्लास का भी विषय यही है कि भारत वर्ष या जम्बूद्वीप जिसे हम कहते हैं कि महिमा, भारत देश की महिमा हम थोड़ी सुनेंगे। तो आप सबने बचपन में तो सही, कुछ तो हमारे यहाँ पर विद्यार्थी भी है, तो बचपन में तो हम 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी रहता था तो बहुत जल्दी उठकर हम नहा धोकर जो परेड रहता था उसमें जाते थे। उसमें उसके पहले ही जैसे हम जागते थे उसी उसके पहले ही भारत देश के पैट्रियटिक सॉन्ग्स मतलब देशभक्ति पर गीत वो चलते थे, और अनेकों अनेकों गीत गाते गाते ही हम सब फ्रेश होके तैयार होके हम स्कूल जाया करते थे। उसके बाद नारे लगाते हुए गांव में परेड लगाते थे, और उसके पश्चात फिर वापस स्कूल आने के पश्चात हमारे प्रिंसिपल या और टीचर्स या कुछ स्टूडेंट्स भी देशभक्ति के ऊपर हमें एक आधा जैसे भाषण देते थे, और वो सुनने के पश्चात सब जन कुछ प्रसाद ग्रहण करके घर वापस लौटते थे। तो ये सभी लोगों ने अनुभव किया होगा, तो हमने भी हमारे बचपन में ये सब गीत सुने हैं। और वो समय खासकर वो जो दिन रहते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी वो दिन में तो कम से कम हमारे हृदय में देश के प्रति प्रेम या देशभक्ति का जो है बहुत अच्छा अनुभव हमको आता है। उसमें ही एक गीत मुझे बहुत भाता है अभी भी, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। आपको भी पता ही रहेगा कि एक जो भारतीय व्यक्ति है वो विदेश में जाता है, और वहां पर जाने के पश्चात वहां पे एक क्लब रहता है, क्लब में वो प्रवेश करता है, और वो क्लब में ज्यादातर लोग भारतीय वंश के रहते हैं, माने जन्म से भारतीय या उनका फैमिली वहां पे भारतीय है इस प्रकार। और परंतु सभी जन सूट बूट टाई में एकदम आते हैं, और एक जन तो उसको पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे एक क्लब में आने के बाद, तो बोलते कि मुझे ठीक लग रहा है परंतु ऐसा भारतीय नहीं लग रहा है, मतलब जो भारतीय जो कल्चर है या ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। तो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, बोलता है उनके साथ वाला ही भारतीय रहता है वो भी, कि भारतीय मतलब क्या, फटे टूटे कपड़े पहनने के, और ऐसा मतलब गरीब देश, ऐसा उस समय का विचार था वो क्लब में लोगों का। और तो वो बोलता है कि अरे आप भी तो भारतीय है, आप ऐसा क्यों बोल रहे भारत को। वो बोले भारतीय बोल के मुझे गाली मत दो, इतना उसको गुस्सा आता है। तो क्या भारत का कंट्रीब्यूशन दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा बोलता है, और क्या है कंट्रीब्यूशन, 0-0-0 ऐसा बोलता है इसको। तो उसमें फिर वो जो हीरो रहता है वो गाने का पैट्रियोटिक सॉन्ग गाता है, उसमें वो जीरो से शुरुआत करता है कि जीरो, भारत ने दुनिया को जीरो दिया। तो आर्यभट्ट जो थे भारत के शास्त्रज्ञ, उन्होंने ही दुनिया को जीरो की संकल्पना दी, और उसी से गिनती और सब कैलकुलेशंस चालू हो गए। तो इसलिए केवल जीरो भी कंट्रीब्यूशन ही है भारत का। तो उसमें वो गीत गाते हैं, आपको आता होगा, मैं गाता हूं आपके लिए। है प्रीत जहां की री सदा, मैं गीत वहां का गाता हूँ। आता है आगे, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो देखिए, पहले की जो मूवीज भी रहते थे उसमें भी कुछ तो बोध लेने जैसा था। वो सॉन्ग आप पूरा सुनेंगे ना, उसमें बहुत सारी उपलब्धियां या जो कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत देश ने दुनिया के प्रति किए है, उसके बारे में सब बताया है। तो वो गीत भी सुनेंगे तो अपना प्रगति होगा, अपना ज्ञान में वृद्धि होगी। आजकल के गीत थोड़े अलग रहते हैं, उसमें कुछ समझता नहीं है कि किसका क्या लाभ होगा। परंतु वो गीत भी अच्छा था, उसमें उन्होंने बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशन बताए। विशेषकर से शुरुआत में ही मैंने बोला कि जीरो का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बताया। और फिर हमको भी चाहिए कि हमें अपने देश का महिमा पता होना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग बाहर देश जा चुके होंगे, कुछ लोग जाएंगे। कभी कभी बाहर देश के लोग अपने यहाँ पे आते, विशेष रूप से बाहर देश के लोग जब भारत में आते हैं तो वो भारत के लिए या अपने देश के लिए जो रिस्पेक्ट लेकर ही आते हैं। उन्होंने अपने देश की महिमा के बारे में सुना रहता है, पढ़ा रहता है, और उनको निजी रूप से भारत देश के प्रति प्रेम रहता है। परंतु भारतीय वंश के लोग, माने हमारे जैसे लोग, वे जब बाहर जाते हैं तो उनको अपने खुद को भारतीय बताने में या भारत का जो पहराव है या भाषा है ये सब बोलने में शर्म आती है, हिचकिचाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमको हमारी संस्कृति, हमारा जो महान गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में पता नहीं है। तो हमको चाहिए कि खुद भी इस भारत देश की महिमा के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से अपने जो बच्चे हैं उनको इतिहास के बारे में, भारत देश की महानता के बारे में बताना चाहिए, ताकि उन्हें वो जो न्यूनगंड है, नेगेटिविटी फील नहीं होनी चाहिए। तो दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट कल्चर, माने सबसे पुरानी संस्कृति कोई है तो भारतीय संस्कृति है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। कभी कभी सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ही माना जाता है, क्योंकि एज सच आप देखेंगे तो भारत में विशेष रूप से हिंदू जो भी है, जो भी हिंदू जन है, वो सब जन खुद को सनातनी मानते हैं। और वो सही भी है कि हिंदू धर्म का जो भी नियमावली है या भी संस्कृति है वो सनातनी है या सनातन धर्म है। परंतु सनातन धर्म का जो व्याख्या है वो केवल एक कल्ट, माने एक भगवान को मानने वाले लोग या एक प्रकार का कार्य करने वाले लोग, ऐसा नहीं। वो एक जीवन शैली है। हाँ, जन्म से ही नहीं, माँ के गर्भ से लेकर अंत्यविधि तक अलग अलग समय पर अलग अलग विधियां, अलग अलग संस्कार बताए गए हैं, अलग अलग वर्ण आश्रम, कितने सारे नियम और कितनी सारी घटनाएं अपने संस्कृति में है। पूरे जो दुनिया की जो भी संस्कृतियां है, अदर अदर देन सनातन, माने सनातन धर्म छोड़कर बाकी जो भी संस्कृतियां है वो थोड़ी लेट आई है। माने जो क्रिश्चियन संस्कृति है वो जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से, मानो जीरो, वहां से एक्चुअली ईयर हम चालू करते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। सो वहां से मानो 2000 साल, 2023 साल पहले वो आई। फिर गौतम बुद्ध जो आए उनके भी 500 साल पहले आए। उसके पहले भी चाइना का इतिहास है, वो 600 साल बिफोर क्राइस्ट ऐसा है, इंपेरियल चाइना। और अमेरिका वगैरह तो वो तो आफ्टर मतलब जीसस का इसके इसके ऊपर डिस्कवर हुआ, 1500 AD में अमेरिका वगैरह डिस्कवर हुआ, रोमन एम्पायर 200 AD। तो ये सब जो संस्कृतियां है दुनिया में वो सब लेटेस्ट है, अभी आए हैं, क्योंकि उनका इतना इतिहास लिखा हुआ नहीं है। परंतु जो भारतीय संस्कृति है उसका इतिहास बहुत पुराना है। जैसे आप देखेंगे महाभारत, महाभारत आज से 5000 साल पुराना है। उसके भी पूर्व रामायण, रामायण लगभग 8,69,000 साल पुराना है। तो लगभग 9 लाख साल पुराना इतिहास है रामायण का। और ऐसा नहीं कि ये सब माइथोलॉजिकल है, माइथोलॉजिकल माने पौराणिक। हमारे मराठी में एक प्रोवर्ब था कि पुराणातली वांगी पुराणात, म्हणजे जो पुराण में लिखा होता है उसका कुछ सही नहीं रहता है। परंतु ऐसा नहीं है, आज के डेट में आप अगर ढूंढने जाएंगे तो द्वारका का इतिहास समुद्र में मिलेगा, रामायण का इतिहास समुद्र में अभी भी लोगों को ब्रिज दिखता है। तो ऐसा नहीं कि ये कुछ माइथोलॉजिकल बातें हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। नहीं, अपना जो गौरवशाली इतिहास है वो वास्तविक में हो चुका है, वास्तविक में उसके प्रमाण अभी भी भारत देश में उपलब्ध है। एक तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि महाभारत की कथा बताते समय, आज की डेट में भी कुरुक्षेत्र नाम का गांव अस्तित्व में है। 5,000 साल पूर्व ये शास्त्रों में उसका वर्णन है कुरुक्षेत्र, और आज भी कुरुक्षेत्र उपस्थित है। हाँ, तो आप देखेंगे तो वो बोलते कि दिल्ली से इतने इतने किलोमीटर पे ये है, क्योंकि ये जो पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। आपको मुझे कुरुक्षेत्र बहुत कॉमन लगता है कि अरे दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र है, कभी भी जा सकते हैं, परंतु बाहर देश के लोग विशेष रूप से भक्त सालों साल महीनों महीनों पैसा जमा करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत में आ पाए, भगवान का जो जन्म स्थान है जैसे कि मथुरा वृंदावन, नवदीप मायापुर या कुरुक्षेत्र जहां पे भगवद गीता बताई गई है, इनका दर्शन ले पाए। तो हमारा परम भाग्य, परम सौभाग्य है कि हम भारत देश में जन्म लिए हैं, ताकि हमारे लिए ये जो धाम है, भगवान के जो जन्म स्थान या कर्म स्थान है, वहां पे हम दर्शन लेने के लिए जा सकते हैं। तो हमने पहली बार देखा कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, ये जो है पूरे दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पौराणिक, सबसे पहले आई हुई संस्कृति है और सबसे एडवांस संस्कृति है। ऐसा नहीं कि अभी जो डार्विन का सिद्धांत हम पढ़ते हैं कि कैसे मानव की उत्क्रांति बंदर से हुई, परंतु अपना जो वैदिक सिद्धांत है उसमें मानव की उत्पत्ति मनु या ब्रह्मा जी से हुई। तो इसलिए हम बुद्धिमान हैं, है ना? नहीं तो हम अगर बंदर से आते तो थोड़ा इतना बुद्धि नहीं रहता था, है ना? तो इसलिए हमारा जो उत्पत्ति है वो भी ब्रह्मा जी से हुआ है, उसके भी शास्त्रिक प्रमाण है। फिर भारत का और एक कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग शास्त्र ने, अलग अलग जो शास्त्र है, शास्त्र में केवल ऐसे नहीं कि भगवान के बारे में शास्त्र, जो भौतिक शास्त्र है जैसे कि एटॉमिक थ्योरी, जो एटॉमिक थ्योरी हमने एटम बॉम्ब के बारे में सुना होगा, हिरोशिमा नागाशिका पे वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बॉम्ब डाला था, अभी तक उसका परिणाम देखने में मिल रहा है, वहां के लोग अपंग होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो एटॉमिक थ्योरी है उसका सिद्धांत किसने दिया? महर्षि कणाद। तो ये भारतीय थे। फिर अल्जेब्रा जो मैथमेटिक्स है उसका महर्षि भास्कराचार्य। देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी जो सिद्धांत है शुरुआत में महर्षि भरद्वाज ने दिया है। एस्ट्रोलॉजी महर्षि वराहमीर। देन धनुर्वेद का जो शास्त्र है उसके बारे में सब लिखा हुआ है महर्षि द्रोणाचार्य ने। योग, आज 21 जून को हम पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाते हैं, तो पूरी दुनिया योगा को फॉलो कर रही है, परंतु योगा की शुरुआत जो है वो भारत से हुई है, और भारत के जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने ये योग की शुरुआत की। फिर इकोनॉमी के बारे में चाणक्य पंडित ने लिखा हुआ है। लॉ, आज के डेट में भी जो मनु संहिता में जो लॉज लिखे हुए हैं वो बहुत से प्रमाण में लागू होते हैं, क्योंकि वो इटर्नल है। वो जो ज्ञान है जो हमें इन महर्षियों से मिला हुआ है वो परंपरा में मिला हुआ ज्ञान है। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ तो इन्वेंशन किया, कुछ तो प्लस माइनस करके कुछ तो ढूंढ के निकाला है। बहुत सा ज्ञान उनको भगवान से डायरेक्ट प्राप्त हुआ है या वेदों में लिखा है। वेदों का जो ज्ञान है वो आज के डेट में भी साइंटिफिकली प्रूव होता है। अभी हम मार्शल आर्ट चाइना में देखते हैं कि वो कुंग फू वगैरह, उसका भी शुरुआत जो है वो इंडिया भारत में ही हुआ है। उसका इधर नाम था कलयारू पट्टू नाम का एक खेल था, उसी का जो अलग वर्जन जो है या थोड़ा चेंज करके वर्जन चाइना में कुंग फू या कराटे वगैरह सब है। तो हम देखेंगे तो सभी शास्त्रों का जो उगम स्थान है वो भी भारत देश है आज की डेट में, प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि भारत बहुत महान था और बीच में अंग्रेज आए। हमने देखा जब भारत में अंग्रेजों ने प्रवेश किया उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय में लगभग 1500 AD भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में 26% कंट्रीब्यूशन था। माने पूरे दुनिया का जो भी पैसा है, जो भी बिजनेस होता है, उसमें 26% बिजनेस जो है वो भारत से होता था। और इंडिया हैड 34,000 शिप्स, उस समय में हमारे पास 34,000 बड़ी बड़ी नौकाएं थी जो कि मालवाहु, जो कि बिजनेस करने के लिए लोग यूज करते थे। तो वो समय का, और आज की डेट में, आज की तारीख में भी एनआरआई जो रहते हैं, जो भारतीय वंश के लोग हैं और बाहर देश में जाके काम करते हैं, उनका जो इकोनॉमिकल टर्नओवर है वो लगभग $30 बिलियन है। तो काफी है आज की दुनिया में भी। अमेरिका में वहां का जो पॉपुलेशन है उसमें भी जो भारतीय वंश के लोग हैं उनमें पढ़ाई करने की या चीजें समझ लेने की या उनके ऊपर काम करने की क्षमता ये ज्यादा है, ऐसा देखा गया है। वहां पे स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो ग्रेजुएट होने की जो परसेंटेज है उसमें जो अमेरिका में बॉर्न वहां पे जन्मे हुए जो लोग हैं उसमें से केवल 40% लोग ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, परंतु वहां पे जो भारतीय है उसमें वो 78% लोग ग्रेजुएट होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अमेरिका में केवल 3% है, अमेरिकन लोग जो है वो 3% लोग ही पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और इंडियन लोग वहां के इंडियन 28%, और भारत में के जो इंडियन है तो मुझे लगता है लगभग 50-80% लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहेंगे, क्योंकि उससे पहले जॉब ही नहीं मिलता है भारत में। परंतु अमेरिका में जो बिल गेट्स है उनको पूछा कि आप कौन सी इंस्टीट्यूट, माने अभी हार्वर्ड ऐसे बहुत बहुत सी विश्वविद्यालय दुनिया में प्रसिद्ध है, तो वो तो पूरे दुनिया में काम करते हैं, तो उनको पूछा कि आप कौन सी संस्था से आपके जो गिने चुने जो इंपॉर्टेंट रोल्स देने के लिए जो एम्प्लॉयज है उनको चुनेंगे, तो बोले हम केवल भारत का जो IIT है वहीं से ज्यादा लोगों को लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों में इनोवेटिव थिंकिंग, जो जिसको हिंदी शब्द जुगाड़ है तो ये करने की क्षमता रहती है। तो कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो उसमें वो कुछ ना कुछ बैठकर सोचकर विचार कर सॉल्यूशन निकालते हैं, थक नहीं जाते या छोड़ नहीं देते। तो ये भारत की महानता है आज की डेट में भी। फिर भारत में लगभग 1500 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग, जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर भी हम जगह चेंज करते तो वहां पे भाषा चेंज हो जाती है। मानो अभी महाराष्ट्र में मराठी मदर टंग है सबका, परंतु पुणे का मराठी अलग है, फिर ये जो मराठवाड़ा विभाग है उधर का मराठी अलग है, फिर खानदेश का मराठी अलग है। आप तुरंत अगर इधर का व्यक्ति, मानो पुणे का व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा और वो थोड़ा बात करेगा तो समझ में आ जाएगा ये पुणे का है, और हमारा पालघर का व्यक्ति अगर पुणे में जाएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये पालघर का है। तो एक ही राज्य में अलग अलग विभाग में अलग अलग भाषाएं हैं, ये भी बड़ी महानता है। फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कुंभ मेला में एक बार कि भक्ति जो है भारतीयों के नसों नसों में भरी है, और नास्तिकवाद जो है वो केवल ऊपरी दिखावा है, आप थोड़ा ही उसको स्क्रैच करेंगे, थोड़ा ही उसको बातें करेंगे थोड़ा तो समझ में आ जाएगा कि वो भगवान का भक्ति है या भगवान को मानने वाला है। बाहर के देश में बहुत से लोग नास्तिकवादी है, उनको भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं है, परंतु भारत इतना महान देश है कि यहाँ का जो बीड़ी तंबाकू है उसके ऊपर भी गणेश बीड़ी नाम है, मतलब उसके ऊपर भी लोग भगवान को ही आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मराठी बोर्ड लगाना चाहिए महाराष्ट्र में, उसमें लिखा है कि महान पुरुषों के और देवी देवताओं के चित्र मद्य के दुकान पे ऊपर या दारू सिगरेट के दुकान के ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब लोग गलत काम भी करते हैं तो उनको लगता है कि भगवान को सेंटर में रख के करे, तो इतना भारतीय लोगों के नसों नसों में भगवान के ऊपर विश्वास है। केवल जो कुछ लोगों को अपनी परिस्थितियों के कारण, कुछ दुख के कारण भगवान के ऊपर उनका गुस्सा रहता है, इसलिए वो थोड़े समय के लिए भगवान को नहीं मानते, अदरवाइज लगभग सभी लोग भगवान को मानने वाले हैं भारत में। ये भी बड़ी बात है। एक अभी गौरंग प्रभु जी का दर्शन हुआ तो उनका वो एक ऑफरिंग दे रहे थे महाराज के बारे में कि उनका जब IIT पूरा हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनको अमेरिका जाने की इच्छा थी, तो उनके वे गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनसे वे पूछते हैं कि महाराज जी मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए या डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका जाना है, और वहां जाके मैं और अच्छा आगे का आईआईटी के आगे का पढ़ाई करूंगा और बाद में और प्रचार में सहकार्य होगा, मेरी भी भक्ति अच्छे से बढ़ेगी। तो महाराज जी तो यूजुअली किसी को कुछ काम करने से रोकते नहीं हैं, परंतु उनके जो प्रिय शिष्य रहते हैं उनको पता है कि ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा उसको वो सहजता से बोल देते हैं। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि आपको अगर इंद्रिय भोग करना है तो अमेरिका जाओ, और आपको अगर कृष्ण भक्ति करनी है तो भारत में रहो। तो समझ गए, तो वे भारत में ही रहे। तो ऐसा है कि आपको अगर इंद्रिय तृप्ति करना है, अपना जीवन जैसे प्राणियों के भांति क्या आहार निद्रा भय मैथुन इन्हीं चीजों में वेस्ट करना है, तो हमें भारत बाहर देश में जाने की आवश्यकता है। परंतु अगर हमें हमारा जीवन सार्थक करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की भक्ति करना है, अंत में भगवान के धाम में प्रवेश करने की अगर इच्छा है, तो सबसे अच्छी जगह कोई है तो भारत देश है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है। तो भारत का जो है नाम, जो भारत देश का जो नाम है वो भरत महाराज के नाम से पड़ा है। तो शास्त्रों में अलग अलग अनेकों भरत हो चुके हैं, तो परंतु उसमें से तीन चार जिनके बारे में शास्त्रों में ज्यादा वर्णन आता है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एक तो भरत सबको पता है, प्रभु श्री राम के भाई। हाँ, भरत राम, राम जी के तीन भाइयों का नाम बताइए, आप बताओ। मैंने एक बोला भरत, अभी दो जनों का नाम बताओ, बताओ नील माधव, एक बताओ। हाँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत। हाँ, टोटल चार भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बराबर, उनके लिए तालियां बजाते। सो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि किस प्रकार ये चार भाई थे। तो इनका रामायण का स्टोरी तो अभी सबको पता है, परंतु भरत जी का जीवन चरित्र है उसमें से हम एक दो सीख लेंगे। देखिए आज की दुनिया में हम देखते हैं, इवन भारत में भी, कि भाई 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 बहन भी आज के डेट में कि झगड़ रहे किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, माता पिता की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरे बच्चों को भी मिलनी चाहिए, ऐसा सब तर्क लगाकर सब घरों घरों में गांव गांव में ये झगड़े चल रहे हैं। परंतु प्रभु श्री राम का समय था, भरत महाराज को उनकी माता की कुनीति से उनको पूरा राज्य मिला था, परंतु उन्होंने वो राज्य तो लिया ही नहीं, और पूरी सेना को लेके वे प्रभु श्री राम की खोज में चित्रकूट चले गए। वहां पर जाके उन्होंने बहुत दिन प्रभु श्री राम को विनती की कि आप वापस आ जाओ और आपका राज्य ले लो, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, जब प्रभु श्री राम तैयार नहीं हुए अपना वचन तोड़ने के लिए, तब तो उन्होंने प्रभु श्री राम की पादुकाएं लाए और उनको सिंहासन पर रखकर उन उनसे राज्य किया, राज्य करवाया। इतना ही नहीं, अपने निजी जीवन में उन्होंने संकल्प लिया, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम वन में रह रहे हैं और जमीन पे सो रहे हैं, तो मैं तो उनसे नीच हूं, मैं तो उनसे छोटा हूं, तो मैं जमीन के भी नीचे सोऊंगा और उनकी तरह ही वनवासी जीवन बिताऊंगा। तो वे भी अयोध्या के पास नंदीग्राम नाम का गांव है, वहां पर एक जमीन में गड्ढा कर उसमें रहते थे, और जो सन्यासियों का वेश रहता है ऐसे प्रभु जी जैसे सादे कपड़े पहनते थे, और कंदमूल खाकर उन्होंने भी 14 साल बिताए। तो हम उनसे देखते हैं कि किस प्रकार भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। हाँ, विशेष रूप से किस प्रकार भाई का भगवान का सेवा करना चाहिए और उसमें भाव कैसा होना चाहिए। आज के डेट में हम सेवा भी कुछ करते हैं तो हमें तुरंत थोड़ा अभिमान आ जाता है कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैं वो सेवा कर रहा हूँ, मैं इसके लिए ये किया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं हमेशा कि हमको दो चीजें जीवन में भूल जानी चाहिए। एक चीज है कि दूसरे व्यक्ति ने हमसे क्या बुरा बर्ताव किया। हाँ, ये प्रभु जी ने मुझे ऐसा बोला, ये मेरे बॉस ने मुझे ऐसा डांटा, ये मेरे फैमिली मेंबर ने मुझे ऐसा किया, ये सब जो गलत चीजें हैं हमारे साथ, जो गलत चीजें हुई है वो हमें भूल जानी चाहिए। और दूसरा चीज महाराज जी कहते हैं कि हम दूसरों के लिए जो अच्छा करते हैं वो भी हमें भूल जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, कोई भी हम पुण्य करते हैं या धार्मिक कार्य करते हैं और उसका हमेशा बोलबाला करते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वृंदावन बिहारी जी को ये दिया, मैंने गोपीनाथ को ये दिया, मैंने ये किया, जब हम बात बार बार जब भी बोलते हैं वही चीजें, तो उसका जो पुण्य फल है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। तो हमको भी ये अपने जीवन में करना चाहिए। दूसरे तो ये जो भरत महाराज थे बहुत ही अच्छे शासक थे और प्रभु श्री राम के भाई थे, ये एक भरत हो गए, उनके नाम से भारत देश का नाम भारत है। दूसरे एक भरत महाराज हो गए, वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। आपसे कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों को ये कथा पता होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी, तो हम चर्चा करेंगे। तो एक ऋषि थे, उनका नाम था विश्वामित्र मुनि, श्री राम के गुरु थे, श्री राम के दो मुख्य गुरु थे, एक वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो ऋषि थे वो राजर्षि थे, पहले वे भी राजा थे, और उनका एक बार उनका भेंट या ये वशिष्ठ ऋषि से हुआ, तो उस समय उन्होंने ठान लिया कि मुझे राजर्षि से ब्रह्म ऋषि बनना है, क्योंकि ब्रह्म ऋषि का शक्ति जो है ज्यादा है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। इसलिए उन्होंने बहुत सालों तक तपश्चर्या की, और दुनिया में कोई भी ज्यादा तपश्चर्या करता है तो इंद्र जो है उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी या भय लगता है कि अरे कोई भी जो तपश्चर्या कर रहा है शायद मेरा इंद्र पद प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो तुरंत वे उसके जो तपश्चर्या में कुछ तो विघ्न भेज देते हैं। तो उन्होंने मेनका नाम की जो अप्सरा थी उनको वहां पे भेज दिया। वे तो आग बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे थे या तपश्चर्या कर रहे थे, परंतु केवल वो जो मेनका थी उसके पैरों के पंजन के आवाज से उनका मेडिटेशन डिस्टर्ब हो गया। तो देखिए भक्ति में भी हमको चाहिए कि बहुत ध्यानपूर्वक भक्ति करनी पड़ती है। विशेष रूप से भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि व्यवसायित्मिका बुद्धि एको ही कुरुनंदना, तो हमको एक वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन भगवान के ऊपर ध्यान देकर भक्ति करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन आ गया तो हमारा नुकसान होता है। विश्वामित्र मुनि इतने बड़े ऋषि थे, इतने सालों की तपश्चर्या की थी, परंतु वो जो अप्सरा थी उसके पंजन के आवाज से उनका मेडिटेशन डिस्टर्ब हो गया, और फिर उन दोनों के संयोग से एक पुत्री की प्राप्ति हुई उनको, उसका नाम है शकुंतला। वो शकुंत नाम के पक्षी थे, उनके घोंसले में या उनके एरिया में उसका रक्षण हुआ था, इसलिए उसका नाम शकुंतला हुआ। कण्व ऋषि के आश्रम में उसका भरण पोषण हुआ। फिर दुष्यंत नाम के एक राजा थे, वे वहां पर आए घूमते घूमते, और उनको वो कण्व ऋषि के आश्रम में जब वे गए तो उनका इस शकुंतला से भेंट हुआ, उन्होंने गंधर्व विवाह किया उनसे, और फिर उनके उनके द्वारा एक पुत्र उनको प्राप्त हुआ, उसका भी नाम भरत था। तो उनका स्टोरी काफी लंबा है परंतु हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय कम है। तो उनके नाम से भी भारत देश को भरत इस भरत महाराज के नाम से भी भारत देश का नाम भारत है। और एक भरत मुनि हो चुके हैं, उन्होंने भरत का, उनका जो भरत है उसका फुल फॉर्म भाव राग ताल, ऐसे वो जो नाट्य शास्त्र है और संगीत शास्त्र कला शास्त्र है इसका जो नॉलेज है उन्होंने वो सब लिखा, और इसकी वजह से वो भरत मुनि वो तो इतने फेमस नहीं है परंतु उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में भी जो हम साउथ में भरतनाट्यम सुनते हैं देखते हैं और बाहर मतलब मणिपुरी डांस, ये जो भी कलाएं है और नाट्य है इसके उगम स्थान है भरत मुनि। और चौथे एक भरत महाराज है ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़े जो कि बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अच्छे राजा भी थे उनका नाम भी था भरत महाराज, और उनके नाम से भी भारत देश को भारत देश कहा जाता है। तो ये ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज, उनका स्टोरी भी भागवत में आता है, और उनके तीन लाइफ का स्टोरी आता है कि पहले जन्म में वे भरत महाराज थे, उन्होंने संसार का त्याग करके संन्यास लिया, और बाद में एक हिरण से आसक्त होकर उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा, और तीसरे जन्म में वो जड़ भरत होके भगवान की प्राप्ति किए। तो ये भरत महाराज है। तो ऐसे अनेकों अनेकों भरत का शास्त्रों में उदाहरण है। विशेष रूप से ये चार भरत लोग जो भरत महाराज है, या भरत एक भरत ऋषि भी है उसमें से मुनि है, इनके नाम से भारत देश को भारत कहके कहा जाता है। पहले भारत देश का नाम अजनाब या इलावृत वर्ष ऐसा था। और जो भारत देश पहले जो था वो पूरी दुनिया को ही लगभग भारत कहा जाता था। आज की डेट में, आज की तारीख में केवल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर महाराष्ट्र से लेके बंगाल तक इतना ही भारत देश सीमित किया गया है। परंतु पूर्वी जो भारत था या जम्बूद्वीप था वो पूरे आर्यावर्त को, पूरे दुनिया को ही भारत देश कहा जाता था। फिर ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता भी भारत देश में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि देखिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्म और ज्ञान दोनों का बंधन से मुक्ति हमें भक्ति से मिल सकती है और वो सुविधा भारत देश में है। कर्म करके हम पुण्य अर्जित करते हैं, उससे हम स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। परंतु स्वर्गलोक का एक नियम है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, माने जैसे अपना पुण्य खत्म होता है तो हमें वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। जैसे हम हमारे निजी जीवन में देखते हैं कि बैंक में हमने कुछ पैसा रखा होता है और जैसे ही वो पूरा पैसा खत्म होता है तो फिर बैंक हमें पैसा नहीं देती है, तो वो पैसे का हम उपभोग नहीं ले पाते। उसी प्रकार जितना पुण्य हमने संचित किया है उसके अनुसार हमें स्वर्गलोक में भोग करने को मिलते हैं, उसके पश्चात वापस हमें मृत्युलोक में आना पड़ता है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि ये जो देवी देवता है थोड़ा सा पुण्य बचा के रखते हैं और उससे उसके अगेंस्ट वो बोलते कि हमें भारत देश में जन्म दो, क्योंकि यहाँ पे वापस से भगवान की भक्ति करने का जो योग है, संधि है, वो ज्यादा है। दूसरा, ज्ञान मार्ग के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम ज्ञान मार्ग का अवलंब करते हैं अपने जीवन में तो उससे ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि या लाभ क्या होता है, हम ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं, हमें मुक्ति मिल सकती है। परंतु ऐसा देखा जाता है कि ब्रह्मवादी जो लोग हैं वो भी कुछ समय के बाद वापस से भौतिक चीजों में लुप्त हो जाते हैं। कई कई मुनि ऋषि और बाबा महाराज स्वामी जी इनका भी पतन हुआ हुआ हमने देखा है कि वे वापस से इस भौतिक चीजों में पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रह्म स्थिति है उसमें कोई आनंद नहीं मिलता है, वहां पे केवल सत और चित है, नॉलेज है और इटर्निटी है, परंतु आनंद नहीं है। इसलिए वापस आनंद की खोज में वे लोग मृत्युलोक में या भौतिक संसार में गिरते हैं। परंतु हमको क्या चाहिए? भगवत धाम जाना है। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, माने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे भगवान के पास जाते हैं और वहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पे जाने के बाद वापस आने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं होता है। तो हमको चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आखिरकार कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भारत देश में जन्म लिया है उसका दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 9.41 में ये श्लोक आता है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो भारत जन्म देश में अगर हमारा मनुष्य जन्म हमें मिला है तो हमारे दो कर्तव्य है। क्या है? पहला, जन्म सार्थक करी, खुद का जन्म सार्थक करो, और दूसरा है कर परोपकार, फिर दूसरे को भी भगवान का भक्ति दो। तो जन्म सार्थक कैसे करेंगे हम? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी पेड़ है वो उसकी मजबूती कहां से आती है? उसकी जड़ों से मजबूती आती है। अगर हम कहेंगे कि नहीं मुझे बहुत सेवा करना है, मुझे बहुत भक्ति करना है, मुझे बहुत काम करना है, और ये सब कारण देते हुए हम अगर खुद की साधना को, हमारी खुद की भक्ति को समय नहीं दे पाते तो हमारी जड़ें कमजोर हो जाएगी और जैसे ही थोड़ी सी आंधी आ जाएगी तो हमारा वृक्ष गिर पड़ेगा। तो हमको चाहिए कि पहले हमारी जड़ें जो है, भक्ति की जड़ें जो है, हमको मजबूत करनी चाहिए। वो किस प्रकार की जाती है? श्रील प्रभुपाद जी कहते कहते चार चीजें हमको करनी चाहिए, ए बी सी डी। बहुत बेसिक चीजें हैं परंतु यही चीजें हम अगर अच्छी तरह से करेंगे तो इससे हमें लाभ होगा। ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहना चाहिए। देखो एक कोई भी व्यक्ति कलयुग में अकेला भक्ति नहीं कर पाता है, हमको हमेशा संघ की आवश्यकता है। हाँ, एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात है वही कल्पते। अकेला भक्ति करने जाएगा तो कुछ तो गलत कर बैठेगा, तो हमको चाहिए कि सबके साथ मिलकर भक्ति करना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए। दूसरा बुक्स, श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे पुस्तक हमारे लिए लिखे रखे हैं, हमको उसका पठन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। सी फॉर चैंटिंग, रोज सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे अभी किसी किसी का शेड्यूल बहुत बिजी रहेगा फिर समय के अनुसार, परंतु नित्य नियम से गिनती कर कुछ भक्त है 16 माला जप करते हैं, कुछ भक्त नए होंगे वो 4 माला जप करते होंगे, कुछ और भी नया होगा उसने जस्ट 1 माला चालू किया होगा, परंतु नियमित रूप से कम जितने प्री डिसाइडेड उन्होंने जितना निर्णय लिया है उतनी मालाएं भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस महामंत्र का जप करना चाहिए। देखिए कुछ भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती है, हमारे जीवन में कुछ भी चीजें ऑटोमेटिक अपने आप नहीं होती है, किसी का तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। हमको प्रयास करना पड़ता है और भगवान की कृपा होती है तो फिर हमारी भक्ति में भी प्रगति होती है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए, सुबह उठकर जप करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, पुस्तक पढ़ने चाहिए, और लास्ट है डाइट, जो भगवान को भोग दिखाकर प्रसाद सेवन करना चाहिए। अगर हम कुछ भी मांस मच्छी ये सब खाएंगे तो कैसे हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमको चाहिए कि भगवान को भोग दिखाया हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रसाद बोलकर ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब चीजें करेंगे तो नैसर्गिक रूप से हमारी जड़ें मजबूत होगी, हमारी भक्ति अच्छी हो पाएंगी, और फिर जो हमें मिला है वो हमें दूसरों को देना चाहिए। संत तुकाराम जी महाराष्ट्र में कहते हैं, जे जे अपनासी ठावे ते इतराशी सांगावे, शाहणे करुण सोड़ावे सकल जना। जो अपने को मिला है हमको चाहिए कि हमारी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें दूसरों को देना चाहिए। केवल खुद के पास हम स्टोर करके रखेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो हमको दूसरों को भी भगवान का ये जो भक्ति है उसका जो ज्ञान है देना चाहिए। किस प्रकार हम भक्तों लोगों को भक्ति दे सकते हैं, कि अपने आजू बाजू में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में जो भी लोग हैं उनको हम भगवान के मंदिर में लेके आ सकते हैं, उनको भगवान का प्रसाद खिला सकते हैं, उनको भगवान के भक्तों की भेंट दिला सकते हैं। अभी लगभग भारत में विशेष रूप से लगभग सभी शहरों में, सभी बड़े शहरों में हरे कृष्णा के मंदिर है, तो वहां पे हम भक्तों को लेके जा सकते हैं। छोटे छोटे जो टाउन है, तालुका प्लेस है, वहां पे भी हरे कृष्णा के सत्संग कार्यक्रम होते हैं, उस सत्संग कार्यक्रम में लोगों को जोड़ सकते हैं। या किसी के गांव में या शहर में तालुका में अगर समझो ऐसा केंद्र नहीं है तो वहां पे प्रभु जी को, जो जहां पे भी मंदिर में जो प्रभु जी रहते हैं वहां पर जाके उनको हम आमंत्रित कर सकते हैं, वहां पर वो जाकर प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरी, हम श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है गीता भागवत, ये जो पुस्तक है उनका वितरण कर सकते हैं। अपना जो कोई कार्यक्रम है घर में, कोई सत्संग कार्यक्रम है या किसी का विवाह है, किसी का बर्थडे है, तो उसमें हम भगवद गीता लोगों को दे सकते हैं गिफ्ट के रूप में, रिटर्न गिफ्ट की आजकल संकल्पना है। अभी तो मैराथन, ये तो महीना जो चल रहा है दिसंबर महीना, इसको मराठी में मार्गशीर्ष महीना कहते हैं। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्षदा एकादशी के दिन भगवद गीता बताई थी, तो ये महीने में अगर हम भगवद गीता वितरित करते हैं या गीता दान करते हैं तो उसका अनेकों पट, मतलब हजार गुना उसका लाभ होता है। यहाँ पे तुलाभार भी लगा है, मानो आपके बच्चे का आप उसके वजन के हिसाब से भगवद गीता दान कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक उपलब्धियां है, मार्ग है कि लोगों को ये जो हमें ज्ञान मिला है वो देने के लिए। तो पहला बताया कि लोगों को कृष्ण भावना से जोड़ना, दूसरा बताया कि श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तक है उसका वितरण करना या उसका दान करना, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना। आज के दुनिया में, विशेष रूप से भारत में, लोगों की भगवान के ऊपर की श्रद्धा कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके सामने देखने के लिए उदाहरण नहीं है। कोई ऐसा भक्त नहीं है कि जो भक्ति भी कर रहा है और अपने निजी जीवन में उसका आचरण या चरित्र भी अच्छा है। ऐसा देख रहे हैं कि कोई कोई साधु है, बाबा है, और कुछ दिनों के बाद उसका न्यूज आ रहा है, कोई तो स्कैंडल में फंस गया, कोई तो मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गया, उसका छापा हुआ, ये हुआ, ऐसा गलत गलत चीजें साधु बाबा महाराज के बारे में ऐसी मीडिया में आ रही है। तो ये सब देखकर लोगों का भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर का विश्वास कम हो रहा है। तो हमको चाहिए भक्त के रूप में आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करना। ब्रह्मचारी प्रभु जी है, ये सब लोग बहुत दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, तो उनका चरित्र देखकर हमको भी उत्साह आता है कि किस प्रकार वे भगवान की सेवा करें। कोई गृहस्थ भक्त है तो उसको चाहिए कि उसने भगवान का भक्ति करते करते परिवार का भी ध्यान देना चाहिए, उसका जो जॉब है, काम है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो ये सब करेंगे तो अपने आप अपने आचरण से प्रीचिंग हो जाएंगी, प्रचार हो जाएगा, आपका आचरण देखकर लोग भगवान की भक्ति को ग्रहण करेंगे। तो हमको चाहिए कि भगवान की भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए। तो आज हमने संक्षिप्त रूप से भारत देश की महिमा सुनी, किस प्रकार भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, तो उसको केवल एक प्राउड फीलिंग, एक 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन गीत गाकर उसका पूरा नहीं होता है, उसको हमको अपने जीवन में उसका लाभ उठाना पड़ेगा। बाहर के देश में भक्ति करना भी बहुत कठिन है, वहां की जो सरकारें हैं, कहां कहां कम्युनिस्ट सरकारें, वहां पे भगवान का गीता खोलना भी कठिन है, कहीं कहीं मुस्लिम देश है, वहां पे भगवान का जप करना भी कठिन है। तो भारत देश में हमारा जन्म हमारा भाग्य है, हमको चाहिए कि ये सब चीजों का हमें लाभ उठाना चाहिए। नहीं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, नहीं तो हम उन प्राणियों की तरह है कि जो वन में स्वतंत्र भ्रमण करने का उनको स्वातंत्र्य मिला है, परंतु केवल उनके क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि पक्षियों की भांति मुक्त किए जाने पर असावधान रहने की वजह से शिकारी के द्वारा पुनः बंदी किए जाते हैं। देखो, हमको भारत देश में जन्म मिला है, भक्ति का अवसर मिला है, परंतु अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी शयने या जठरे शयनम, तो वापस वापस हमको जन्म लेना पड़ेगा। हमको इससे मुक्ति पानी है तो भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति के मार्ग बताए कि भगवान के नाम का जप, भगवान के भक्तों का संग, भगवान के पुस्तकों का पठन और प्रसाद ग्रहण, और वही जो भक्ति हमको मिली है वो दूसरों को देना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ टिप्पणी है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।